ओम शांति। आज हम जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति कैसे मिले, इस विषय को लेकर कर कुछ चर्चा करेंगे। जिनमें आज मनुष्य के मन में शांति क्यों नहीं है, चिंता मिटे कैसे, शांति कैसे मिले, निकट संबंधी अथवा स्नेही मित्रों का देहांत होने पर भी मनुष्यों को शांति कैसे मिले, अपमान की परिस्थिति में भी मन में शांति कैसे बनी रहे, विपरीत परिस्थितियों में भी शांति कैसे हो, व्यर्थ का चिंतन और परचिंतन कैसे मिटे और शांति कैसे मिले, रोग की अवस्था में भी मन में शांति कैसे रहे, निर्धनता की अवस्था में भी मन में शांति कैसे रहे। सो हम आज के इस विषय को आरंभ करते हैं। आज मनुष्य के मन में शांति क्यों नहीं है? संसार के सभी लोग शांति के लिए परम पिता परमात्मा ही से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जबकि परमात्मा शांति के सागर है और मनुष्य आत्माओं के परम पिता भी है और मनुष्य आत्माएं शांति के लिए उनसे याचनाएं भी करती है, तब भी विश्व में अथवा जन मन में अशांति क्यों है? इसका विवेक युक्त और अनुभव गम्य उत्तर केवल यही है कि आज मनुष्य का परमात्मा से कोई भी व्यवहारिक माने प्रैक्टिकल संबंध नहीं है और कि मनुष्य आत्मा परमपिता परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कर्म व्यवहार कर रही है, अर्थात उसने मन वचन तथा कर्म से काम क्रोध आदि विकारों को बसा रखा है। अतः शांति के लिए पुकारने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। अब यही रहस्य समझने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में अवतरित हुए हैं और वह शांति का उपहार लेकर कर आए हैं, परंतु यह उपहार उन्हीं के लिए सुलभ है जो कि अपने पांचों विकारों रूपी अक का उपहार परमात्मा शिव को देते हैं और ईश्वरीय ज्ञान रूपी रतन उनसे लेते हैं। वास्तव में अशांति के मुख्य रूप है चिंता, अपमान, किसी की मृत्यु से होने वाला शोक, निर्धनता, रोग इत्यादि इत्यादि। प्रस्तुत चर्चा में अथवा इस पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन परिस्थितियों में भी मनुष्य को शांति कैसे मिले, चिंता मिटे कैसे, शांति मिले कैसे। आज हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की चिंता से पीड़ित है। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की चिंता है तो माता पिता को अपनी पुत्री को बड़ा होते हुए देखकर उसके लिए अनुकूल वर ढूंढने की चिंता है। एक व्यक्ति किसी अन्य को उधार देने के पश्चात अब इस चिंता में है कि पता नहीं अब वह मनुष्य धन लौटाएगा या नहीं। दूसरा मनुष्य इस चिंता में पड़ा हुआ गल रहा है कि जो धन उसने उधार लिया है अब वो चुकाऊंगा कैसे। निर्धन लोगों को रोटी की चिंता है तो धन कमाने वाले को यह चिंता है कि यह धन हम और किस धंधे में लगाएंगे अथवा कि हमारा काई काला धन पकड़ा न जाए। राजनीतिक लोगों को यह चिंता है कि हम शासन की जो सत्ता है किस प्रकार हत्याएं, और सत्ताधारी लोगों को यह चिंता है कि कहीं सत्ता उनके हाथ से छूट न जाए। देश की सरकार को शत्रु देशों से सुरक्षा की या विरोधी दल के राजनीतिक दाव पेचों से बचकर रहने की चिंता है। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार की चिंता लगी हुई है। इस प्रकार चिंता तो आज यत्र तत्र सर्वत्र है, अर्थात सर्वव्यापक है। प्रश्न उठता है कि चिंता की जंजीरों से मुक्त कैसे हो। तो चिंता का मूल कारण गहराई से विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि मनुष्य चिंता तब करता है जब उसे किसी न किसी प्रकार की हानि की अथवा कुछ भी अशुभ, अहित, अनिष्ट अथवा इच्छा के विरुद्ध होने की आशंका हो। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी सोचता है कि अगर परीक्षा फल अच्छा न हुआ तो बड़ा अहित अथवा अकल्याण हो जाएगा। माता पिता सोचते हैं कि यदि कन्या के लिए शीघ्र ही अच्छा वर नहीं मिला तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। बनिया सोचता है यदि उधार दिया गया पैसा वापस नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। बेरोजगार व्यक्ति स्वयं से कहता है कि यदि जल्दी से कोई धंधा हाथ नहीं लगा तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भविष्य के विषय में थोड़ी बहुत निराशा या आशंका होना ही चिंता का मूल कारण है। अब देखा जाए तो निराशावादियों की इस प्रकार की चिंता के परिणाम स्वरूप ही निराशा उनके पल्ले पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जब बनिया सोचता है कि पता नहीं अमुक व्यक्ति उधार दिया गया धन मुझे वापस देगा या नहीं, तो वह अपने इस संशयात्मक संकल्प से उस व्यक्ति के मन को भी डावाडोल कर देता है जिससे कि उसे धन लेना है। बनिए की निराशावादात्मक चिंता के परिणाम स्वरूप वह मनुष्य भी कभी तो सोचता है कि धन लौटा दूं, कभी सोचता है कि कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा, और कभी कहता है अब तो मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उधार वापस लौटाना कठिन है। इस प्रकार की चिंता से जो सूक्ष्म मानसिक प्रकंपन या विचार तरंगे उत्पन्न होती है वह वातावरण को तथा उस मनुष्य माने जिसके बारे में यह शंका है कि पता नहीं वह धन लौटाएगा या नहीं के मन को बिगाड़कर प्रायः वही परिणाम पैदा कर देती है जो कि चिंता वाला मनुष्य शुभ एवं हितकर नहीं मानता। मनुष्य संशय करता है अर्थात स्वयं हिल जाता है तो उसका कर्म फल भी हिल जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कभी भी अशुभ, अमंगल, अनिष्ट, अहित या हानि की चिंता न करे, बल्कि अपना तथा दूसरों का सदा शुभ चिंतक बना रहे, क्योंकि अशुभ की चिंता या चिंतन से अशुभ ही परिणाम होता है। और यदि अशुभ फल न होकर आशातीत और शुभ परिणाम हो भी तो भी अशुभ की चिंता करने वाला मनुष्य परिणाम का क्षण आने से कई दिन, कई महीने अथवा कई वर्ष पहले अपनी चिंता से स्वयं को घायल करके अपने सिर पर यूं ही पाप ले लेता है। अनिष्ट होने से पहले ही अनिष्ट की चिंता में दुखित होना कोई यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि यह तो भावी को भूत मानकर उससे डरना है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह चेष्टा तो करे परंतु चिंता न करे। वह शुभ चिंतन तो करे किंतु अशुभ की चिंता न करे। चिंता करने से चांस चला जाएगा। चिंता करने वाला मनुष्य सदा यही सोचता है पता नहीं अब क्या होगा। परंतु देखा जाए तो इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, होगा वही जो हमारे वर्तमान कर्मों तथा गत काल में किए गए कर्मों के फलस्वरूप होना होगा। तब फिर जो दृश्य आया ही नहीं है उसकी पहले से चिंता अब क्यों की जाए, जबकि अनहोनी तो होनी ही नहीं है। तब फिर हम यह चिंता क्यों करें कि क्या होगा। मनुष्य को जो सोचना चाहिए कि यह संसार तो एक नाटकशाला है, अब जो वृत्तांत हो रहे हैं उन्हें हम दृश्य की तरह देख रहे हैं। ये दृश्य समाप्त होने के बाद भावी पर्दे पर दूसरा जो दृश्य आएगा उसे भी साक्षी होकर कर देख लेंगे, उसकी अभी चिंता क्यों करें। इस सृष्टि रूपी नाटक की भावी रूपी रील जैसे जैसे खुलकर वृत्तांतों के रूप में हमारे सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे साक्षी होकर हम उसे देखते जाएंगे। अभी तो भविष्य का पार्ट गुप्त है, तब उसकी व्यर्थ चिंता क्यों। वर्तमान समय तो पुरुषार्थ का है, भविष्य देखने का है, चिंता का तो कोई समय ही नहीं है। अभी यदि हम भविष्य की चिंता में लग जाएंगे तो वर्तमान चांस माने की जो अवसर है अथवा समय भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। अतः हमें चिंता न करके चांस लेना चाहिए और पुरुषार्थ करते चलना चाहिए। चिंता करना दूरदर्शिता नहीं है बल्कि दुखदर्शिता है। कोई व्यक्ति ऊपर की गई चर्चा को सुनकर कह सकता है कि मनुष्य को दूरादेशी अर्थात दूर का अंदेशा तो होना ही चाहिए, परंतु चिंता करने का अर्थ न होकर कर दूर का अंदेशा लगाना है, यानी दूरादर्शी न होकर कर दुखदर्शी होना। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य को सोच विचार तो करना ही चाहिए, परंतु चिंता की चक्की में पिसना नहीं चाहिए। उसे चिंतन तो करना चाहिए परंतु चिंता की चिंगारी में अपने को झुलसाना नहीं चाहिए। बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसकी चिंता, किसी को पैसा दिया है तो उसकी चिंता, किसी के रोगी होने का समाचार मिला है तो भी चिंता। यह तो बुरी आदत है। आखिर हम इस संसार में चिंता की चिंगारी में जलने के लिए थोड़ी आए हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह चिंता न करे, शुभ कर्म करते हुए शुभ की चेष्टा करे, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का चित्त गिर पड़ता है, परंतु शुभ चेष्टा करने से उसमें चुस्ती आती है और उसकी चाल भी शुभ हो जाती है। चिंता करने से भला लाभ ही क्या है। चिंता वाला मनुष्य जो परिणाम चाहता है यदि वैसा ही परिणाम निकल आया तब तो उसकी चिंता करते रहना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ, और यदि वैसा परिणाम न निकला जैसा कि वह चाहता था तब भी उसकी चिंता करने से परिणाम में कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो स्पष्ट है कि उसने चिंता कर करके स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दिया। अतः मनुष्य को यह मानना चाहिए कि चिंता पुरुषार्थ में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या के समान है। मृतक मनुष्य का जब शरीर जलाया जाता है तब उसे दुख नहीं होता क्योंकि तब शरीर में चेतना ही नहीं होती, परंतु शरीर जलाए जाने से पहले जीवित मनुष्य को चिंता का दाह अवश्य ही अनुभव होता है। अतः शारीरिक मृत्यु से पहले मानसिक मृत्यु रूप यह जो चिंता है इससे मनुष्य को बचकर ही रहना चाहिए। ईश्वर का चिंतन ही चिंतामणि है। चिंता से निवृत्ति के लिए चिंतामणि प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक मणि है, यदि वह किसी के हाथ आ जाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन कथाओं में इस मणि की बड़ी महिमा है, परंतु स्पष्ट है ऐसी कोई स्थूल मणि तो वास्तव में हो ही नहीं सकती, क्योंकि चिंता तो मनुष्य की एक सूक्ष्म वृत्ति दृष्टिकोण अथवा स्वभाव का नाम है। तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में चिंतामणि क्या है। वास्तव में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन ही एक पुरुषार्थ है जिससे कि मनुष्य के सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस चिंतन को चिंता न कहकर चिंतामणि अर्थात सभी चिंताओं से छुटकारा दिलाने वाली अनमोल युक्ति माना गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि चिंता न करके चिंतामणि को ग्रहण करे। वह आत्मचिंतन और परम पिता परमात्मा के आनंद स्वरूप का चिंतन करे। अन्य प्रकार की चिंताओं से तो मनुष्य का मन इधर उधर भागता है, परंतु आत्मचिंतन से मनुष्य का मन एकाग्र होता है। परमात्मा के स्वरूप चिंतन से मनुष्य के मन में तत्काल ही शांति मिलती है और उसका मन शीतल हो जाता है। चिंता करने से मनुष्य की स्मृति दुर्बल हो जाती है, उसका विवेक मंद पड़ जाता है, उसकी निर्णय की शक्ति ठीक तरह से काम नहीं करती और वह तन्मयता से पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसीलिए चिंता करने से तो कार्य बिगड़ता ही है, क्योंकि मनुष्य शक्तिहीन की न्यायी अथवा उलझे हुए मनुष्य की तरह काम करता है। कहावत है, संकल्पों से सृष्टि बनती है। अतः चिंता करने वाला मनुष्य उल्टा सोच सोच कर उल्टा ही काम कर बैठता है और इसीलिए उल्टा ही परिणाम बनकर उसके सामने आता है। वह अपने ही संकल्पों से वातावरण में खराब स्पंदन माने वाइब्रेशंस और वेव्स द्वारा बुरा परिणाम लेकर आता है। अतः मनुष्य ये निश्चित है, अतः निश्चिंत होकर कर कर्म करने से मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि निश्चित अवस्था में मनुष्य पूरे मन से कार्य कर सकता है। अतः मनुष्य को चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है। सूर्य की भी दिन भर में तीन अवस्थाएं होती है, इसीलिए कहावत भी है, रविहू की दिन भर में तीन अवस्थाएं होत। अतः दिन तो बदलते ही रहते हैं, इसमें घबराने की या चिंता करने की क्या बात है। मनुष्य को सदा ईश्वरीय स्मृति में और आनंद में रहते हुए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। संबंधी अथवा स्नेह मित्रों का देहांत होने पर भी मन को शांति कैसे प्राप्त हो, गहराई से सोचा जाए तो वास्तव में सभी नर नारी एक रेलगाड़ी में बैठे हुए मुसाफिरों की तरह है, जिसमें से कोई पहले स्टेशन पर उतरकर चला जाता है और कोई अधिक दूर तक यात्रा करता है। रेलगाड़ी का कोई यात्री यदि किसी अन्य यात्री से अपना दिल लगा ले, अर्थात यदि वह किसी से मोह ममता का नाता जोड़ ले, तो किसी स्टेशन पर उस प्रिय के उतरने पर रोने लगे, तो उसका ऐसा व्यवहार अज्ञान जनित ही मानना होगा। ठीक इसी प्रकार परम धाम से आई हुई देहधारी आत्माओं के देह त्याग पर शोक करना अथवा शोक मनाना भी तो वैसा ही है जैसे कि परदेशी से प्रीत जोड़कर उसे किसी स्टेशन पर उतरता देख कर कर रोना और चिल्लाना। कहावत भी है, पंछी और परदेशी किसी के मीत नहीं होते। अब आत्मा भी तो वास्तव में एक पंछी ही है जो कि इस समय देह रूपी पिंजरे या घोंसले में विराजमान है, अथवा आत्मा भी तो एक परदेशी है जो कि परम धाम से इस सृष्टि रूपी बेगाने देश में या मुसाफिर खाने में आया है। अतः यहां के किसी भी जीव प्राणी से ऐसा मोह का नाता जोड़ना जिससे कि उसका देह त्याग के बाद शोक हो, गोया ऐसा है जैसा कि इस संसार रूपी मुसाफिर खाने को अपना घर मान लेना अथवा उड़ने वाले पंछी तथा घूमने वाले परदेशी से दिल लगा लेना। यह तो ऐसा है जैसे कि इस संसार की क्षण भंगुरता और परिवर्तनशीलता तथा शरीर की नश्वरता के अमिट नियम को मिटाने की व्यर्थ चेष्टा करना है। यह किसी भी मनुष्य के क्षण पल के जीवन का भरोसा नहीं है। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि वह अपनी सुधि ले, वह उल्टी माला फेरने के बजाय सुल्टी माला फेरे, अर्थात मृतकों की सिमरनी को सिमरने के बजाय अमरनाथ परम पिता शिव की स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करे। वह मातम को महात्तम अर्थात तमो गुण की पराकाष्ठा मानते हुए शोक करने की बजाय शांति करे। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह संसार तो दो चार दिनों का मेला है। मेले के साथियों के साथ या संबंधों को अविनाशी मनाना तो गोया मेला न मानकर मातम मनाने का प्रबंध करना है। या तो मन को मैला करना है अथवा मेले को झमेला बनाना है। इस प्रकार दुखों को व्यक्त करते हुए वे लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि वास्तव में हम सभी परमात्मा ही के पुत्र हैं। बाकी तो हमने इस संसार रूपी नाटकशाला में कुछ समय के लिए भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए ही भिन्न भिन्न नाम व रूप लिए हैं और नाते जोड़े हैं। वास्तव में हम सभी एक विराट नाटक के पाठधारी अथवा एक्टर है और एक स्थान पर अपना पाठ समाप्त हो जाने के पर दूसरा देह रूपी चोला धारण करके दूसरे स्थान पर पाठ बजाने के लिए चले जाते हैं। जैसे हम अपना पुत्र मानते हैं, वह पहले भी किसी अन्य स्थान पर भिन्न नाम रूप से भिन्न ही पाठ बजा रहा था और बाद में वह वहां अपनी लीला का संवरण करके वहां का चोला वहीं छोड़ करके हमारे यहाँ नए चोले माने शरीर में नए नाम रूप से प्रकट हुआ। और अब जब हमारे यहाँ उसका पाठ समाप्त हो गया, वह अन्य स्थान पर अन्य नाम रूप से पाठ बजाने चला गया। उसका न तो हमारे साथ अविनाशी पाठ था, न ही हमारे साथ कोई अविनाशी संबंध ही था, क्योंकि जिस शरीर के आधार पर उसका संबंध और पाठ था, वह शरीर ही अविनाशी वस्तु नहीं था। अतः उसका देहांत हो जाने पर आकुल व्याकुल होने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह प्राणी पहले भी तो हमारे यहाँ कहीं से आया था, वह अनादिकाल से तो हमारे यहाँ नहीं था, तो जो आया था अब वह चला गया। यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, हमें भी तो जाना ही है, हमारा भी सदा यही पाठ तो चलेगा नहीं। अतः शोक करने के बजाय शिव को याद करना चाहिए, वही हमारा सच्चा मित्र, अविनाशी संबंधी, बुढ़ापे की लाठी, दिल का सहारा और सुख का दाता है। वह सभी उसी के पुत्र है, हम सभी उसी के पुत्र है, बाकी सभी नाते क्षण भंगुर है तथा कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर जुड़े हुए हैं। जिसका जब हमारे साथ कर्म खाता चुकता हो जाता है, वह हमसे बिछुड़कर दूसरे संबंध में चला जाता है। अतः मन को ढाढ़स देना चाहिए कि रोने का तो कोई कारण ही नहीं है। रैन बसेरे के साथियों से बिछड़ने पर रोना तो भूल ही है। शव को देखकर रुदान करने की बजाय शिव की याद। मनुष्य को सोचना चाहिए कि यदि पुत्र के मरने से पिता का रोना योग्य हो, तब परमात्मा को 24 घंटे रोने के सिवाय कोई दूसरा धंधा ही न कर सके, क्योंकि सभी नर नारी परमात्मा को अपना माता पिता मानते हैं। और इस प्रकार इस संसार में कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जबकि कुछ न कुछ लोगों का देहांत न हो। परंतु यद्यपि परमात्मा प्रेम का सागर है और सबसे प्यार करता है, तो भी वह किसी से मोह नहीं करता। वह सदा आनंद का सागर है, शांति का सागर कहलाता है। इससे सिद्ध है कि पिता होते हुए भी वह न्यारा है, वह ज्ञान स्वरूप है। अतः हमें भी ज्ञान का मनन करना चाहिए और शव को देख देख कर रुदान करने की बजाय शिव के नाते को सामने लाकर लगन लगानी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी स्थिर और समर्थ सहारा नहीं है। वह हमारा पुत्र भी है और पिता भी है। वह हमसे सभी संबंध निभा सकता है, परंतु मनुष्य की यह अज्ञानता है कि वह परमात्मा शिव के साथ अपने संबंध को न जानता है और न चलता है, बल्कि नश्वर संबंधों के टूटने पर चिल्लाता है। वरना मनुष्य जितने आंसू लौकिक संबंधियों के देहांत पर होने पर बहाता है, यदि वह उससे दसवां हिस्सा भी ईश्वरीय प्रेम के आंसू के रूप में परमात्मा शिव की स्मृति में बहाए, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। उसे फिर कभी आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे और सहारा भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अतः जितना मोह ममता माता का पुत्र में अथवा पत्नी का पति में होता है, अब उतना ही प्यार और वैसा ही घनिष्ठ नाता परमात्मा से जोड़कर देखो, तब आपको मालूम होगा कि वह कैसा समर्थ सहारा है, वह यह संबंध कैसे अंत तक निभाता है और उससे क्या प्राप्ति होती है। वह पतियों का पति और पिताओं का भी परम पिता, सखाओं में भी परम सखा गाया हुआ है, तो अवश्य ही वह इन संबंधों के रूप में स्नेहपूर्ण बरतता होगा ना। मातम करने की बजाय कर्म विधान पर ध्यान दो। मनुष्य तो अपने मोह के वशीभूत होकर असंभव एवं अलभ्य वस्तुओं की भी इच्छा करता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसी प्रकार हर एक मनुष्य अपने प्रिय संबंधी और मित्रों के लिए इच्छा प्रकट करता है कि वह सदा जीता रहे, उसकी कभी भी मृत्यु हो ही ना, उसे बुढ़ापा आए ही ना। परंतु यह तो तभी संभव हो सकता है जबकि उन मित्र संबंधियों ने कभी कोई ऐसा कर्म किया ही ना हो कि जिसका फल रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि होता है। वरना तो मनुष्य का यह मनोरथ, माने कि वह सदा निरोगी और जीता रहे, असंभव ही है। तथापि मोह में फंसा हुआ मनुष्य कर्म विधान पर विचार नहीं करता और सारी सृष्टि के कार्य पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि वह तो चाहता है कि किसी भी तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरा प्रिय तो न मरे। विचार कीजिए, एक माता अपने पुत्र की ममता के कारण कहती है, अब मेरे पुत्र को स्कूल जाना है, अब वर्षा न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि वर्षा में भीग कर मेरा पुत्र बीमार पड़ जाएगा। उस समय वह यह नहीं सोचती कि वर्षा न होने से खेती नहीं होगी और अनाज न होने से दुर्भिक्ष पड़ेगा, न ही वह अपने तथा बच्चे के कर्मों के लेख की मेख और रेख पर ध्यान देती है। अतः यदि मोह के मारे मनुष्य की इस प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होने लगे, तब तो संसार में कोई भी कार्य ठीक तरह से हो ही नहीं सकेगा। यदि प्रकृति के नियम मोह वाले मनुष्यों की इच्छा के अनुसार चले, तब तो सारा कार्य ही रुक जाएगा, तब तो किसी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। एक माता इच्छा करती है कि मेरे पुत्र न मरे, दूसरी माता कहती है कि मेरे यहां पुत्र पैदा हो। अब यदि एक का कोई मित्र या संबंधी न मरे तो दूसरे के घर पुत्र कैसे पैदा होगा, जबकि इन्हीं अनादि अविनाशी आत्माओं ने ही स्थानांतरित और रूपांतरित होना है, तो उन्हें एक स्थान पर देह त्यागना होगा, तभी तो वे दूसरे परिवार में देह धारण करेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी की मृत्यु हो जाने पर कर्मों के विधान पर ध्यान दे और यह सोचे कि इस संसार में आत्माओं का आना जाना तो होता ही है, मेरा जब अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं है तो दूसरों के बारे में मैं अधिकार से कैसे कह सकता हूं कि उनका देहांत न हो। यह सारा नाटक तो एक नियति अथवा अनादि योजना के अनुसार हो रहा है। अतः यहां हरेक के दीर्घ जीवन के लिए शुभ इच्छा तो की जा सकती है, परंतु कोई घटना घटने पर शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि शोक करने से कोई मृतक वापस तो आना ही नहीं। अतः मुझे चाहिए कि इस प्रिय संबंधी की मृत्यु को मैं अपने लिए एक सावधानी अथवा स्मारक माने रिमाइंडर मानूं और स्वयं भी तैयार रहूं। अकेला ही तो जाना होगा, अतः अब मैं अकेलेपन में टिककर जीवन की रही हुई घड़ियों में कालों के भी काल जो कि महाकाल ईश्वर परम पिता शिव है उनकी शरण में चला जाऊं और उनकी स्मृति का आनंद लूं। परमात्मा ही ऐसा पिता पति पुत्र और मित्र है जिसे काल नहीं खाता, अतः उसे मैं अपना सच्चा मित्र मानकर उससे अपना मन की प्रीत जोड़ लूं तो मेरी सदगति हो जाएगी। यह आत्मा सदा सुहागिन सदा सनाथ और सदा समर्थ हो जाएंगी। अगर मैं मृतक मनुष्यों के गुण गा गा कर रोता रहूंगा तो मुझे भी यमदूत लेने आएंगे, क्योंकि मेरे रोने से यह सिद्ध होऊंगा कि मैं भी यमपुरी के लायक हूं। और यदि मैं परमात्मा की याद में खुश रहूंगा तो मुझे देवताओं के विमान लेने आएंगे, क्योंकि मेरे उस पुरुषार्थ से सिद्ध होऊंगा कि मैं धैर्य सहनशीलता संतोष हर्षित मुक्ता और प्रभु स्मृति रूपी दिव्य गुणों से युक्त हूं और इसीलिए वैकुंठ में देवपद के योग्य हूं। इस प्रकार यदि मनुष्य इन ईश्वरीय युक्तियों की धारणा कर पुरुषार्थ करेगा तो मातम और शोक की परिस्थितियों उसके मन को परमात्मा शिव ही की ओर ले जाएंगे, मैं सहायक सिद्ध होंगी और उसे योग्य तथा शांति में स्थिर करेंगी। अपमान की परिस्थिति में भी मनुष्य मन में शांति कैसे बनी रहे। संसार में हम यह देखते हैं कि जब किसी मनुष्य का मान होता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और जब कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो उसे बहुत दुख और अशांति अनुभव होती है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य का जीवन अपने वश में न होकर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई मान की परिस्थिति आ जाए तो वह एक घड़ी खुशी मना लेता है, और यदि किसी ने थोड़ा अनुचित व्यवहार कर दिया हो तो वह 4 मास तक अशांति का अनुभव करता है। परंतु योगी के बारे में तो सिद्ध है प्रसिद्ध है कि वह मान और अपमान दोनों ही परिस्थितियों में समान रीति से खुश रहता है। अतः प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य योग द्वारा सदा ईश्वरीय आनंद में ही रमे रहना चाहते हैं और परवश अर्थात सांसारिक परिस्थितियों के वश में होकर नहीं रहना चाहते, उन्हें मान और अपमान की परिस्थितियों में कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए। व्यर्थ की बात के अर्थ का चिंतन न करना। एक परिस्थिति तो वह होती है जिसमें कि वास्तव में हमारा कोई दोष नहीं होता, परंतु दूसरा कोई कटुभाषी और अधीर व्यक्ति किसी गलत फहमी में पड़कर कुछ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हमारे लिए अयोग्य और अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। अपमान की परिस्थिति में भी मनुष्य के मन में शांति कैसे बनी रहे। संसार में हम देखते हैं कि जब किसी मनुष्य का मान होता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है, और जब कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो उसे बहुत दुख और अशांति का अनुभव होता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य का जीवन अपने वश में न होकर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई मान की परिस्थिति आ जाए तो वह एक घड़ी खुशी मना लेता है, और यदि किसी ने थोड़ा अनुचित व्यवहार कर दिया हो तो वह 4 मास तक अशांति का अनुभव करता है। परंतु योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वह मान और अपमान दोनों ही परिस्थितियों में समान रीति से खुश रहता है। अतः प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य योग द्वारा सदा ईश्वरीय आनंद ही में रमे रहना चाहते हैं और परवश अर्थात सांसारिक परिस्थितियों में के कारण में या उनके परवश होकर नहीं रहना चाहते, उन्हें मान और अपमान की परिस्थितियों में कौन सी युक्तियां अपनानी चाहिए? व्यर्थ बातों के अर्थ का चिंतन न करना। एक परिस्थिति तो वह होती है जिसमें कि वास्तव में हमारा कोई दोष ही नहीं होता, परंतु दूसरा कोई कटुभाषी और अधीर व्यक्ति किसी गलत फहमी में पड़कर कुछ अन्य कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति में हमारे लिए अयोग्य और अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को अन्य कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति में कहता है, तुम तो बुद्धू हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी खोपड़ी में तो अकल है ही नहीं, क्या क्या कहूं, तुम बिल्कुल गधे ही तो हो, एकदम ही अंधे होकर कर काम करते हो, क्या कहूं, तुम बिल्कुल गधे ही तो हो, एकदम अंधे होकर कर काम करते हो, सचमुच तुम तो कोई उल्लू हो। यद्यपि दोष किसी दूसरे व्यक्ति का है, परंतु गलत फहमी के कारण उस मनुष्य का अपमान करने की मंशा से वह उस पर उपरोक्त शब्दों का द्वारा प्रहार करता है। अब यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में अशांत होने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि वास्तव में उस मनुष्य ने कोई गलती तो की ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति गलत फहमी होने के कारण ही व्यर्थ बात कर रहा है। तब व्यर्थ बात के अर्थ का चिंतन ही क्यों किया जाए? तो उस समय उसे यह सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति व्यर्थ बात कर रहा है क्योंकि उसमें मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, तब मैं उस व्यर्थ बात के अर्थ का चिंतन ही क्यों करूं? बेपरवाह बादशाह की न्याय बरतना और निश्चय रूपी सिंहासन पर अडिग रहना। दूसरी बात यह है कि किसी के कहने से न तो कोई मनुष्य गधा या उल्लू बनता है और न ही अंधा होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यर्थ शब्द सुनाए तो वह बेपरवाह निरसंकल्प बना रहे। वह अपने निश्चय रूपी सिंहासन पर अडिग रहे और निष्ठा को न छोड़े। आज मनुष्य गलती यह करता है कि वह स्वयं को बादशाह तो मानता है, माने तभी तो वह चाहता है कि दूसरे उसकी इज्जत करे, परंतु वह बेपरवाह बादशाह अर्थात निश्चिंत और उपराम चित्त नहीं बनता। इसीलिए वह शाहों के शाह परमात्मा की संतान होते हुए तथा विश्व महाराजन श्री नारायण का वंशज होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं करता। वह अपने निश्चय की मस्ती से निकलकर दूसरों के शब्द जाल में आ जाता है, इसीलिए उसे अशांति का अनुभव होता है। यदि वह जल्दी ही निश्चय के सिंहासन को छोड़कर नीचे उतर आता है, वरना जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य से कहता है कि आप तो उल्लू है, तब उस मनुष्य को दुख का अनुभव होने के बजाय उस व्यक्ति पर हंसी आनी चाहिए, क्योंकि वह बेचारा अज्ञानता से गलत ही नाम देता है। वरना तो मनुष्य उल्लू नहीं है बल्कि वह अल्लाह का बच्चा है। परंतु जब हम स्वयं ही स्वयं में संशय कर बैठते हैं तो दुखित होते हैं। इसीलिए उक्ति प्रसिद्ध है कि अहम को जान तू भला, अहम को जो तू भूला तो लगा माया का गोला। स्वमान अर्थार्थ सम्मान में रहना उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जब मनुष्य इस प्रकार का स्व माने आत्मा को मान देता है और सत्य परमात्मा को मानता है तो उसे अपमान की कोई परवाह ही नहीं रहती। अतः मनुष्य को पहले तो अपने आप को इन शब्दों में स्वमान अथवा सम्मान माने सत्मान देना चाहिए कि मैं त्रिलोकी नाथ पतित पावन ज्ञान सागर शांति के सागर आनंद के सागर और प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा की शुद्ध और शांत अमर और अविनाशी संतान हूं। जब मनुष्य इस प्रकार स्वमान माने आत्मनिश्चय में स्थित होता तो उसे अपमान का काटा नहीं चुभेगा। तो याद रखिए कि आप दूसरे के अपशब्दों को मान लेते हैं तभी अपमान अनुभव होता है। अब यहां कोई व्यक्ति कह सकता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए निरादर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तब हमें अपमान का जो अनुभव होता है वह हमारे निश्चय के कारण नहीं है न कि संशय के कारण है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति दूसरे के सामने हमें कहता है कि तुम गधे हो फला फला हो तब हमें यह संशय कभी नहीं होता कि हम मनुष्य नहीं है बल्कि हमें तो पूरा निश्चय है कि हम गधे नहीं है, हम तो मनुष्य ही है। और इसी निश्चय के कारण ही हमें क्रोध आता है कि दूसरे ने हमें गधा क्यों कहा और इसी क्रोध अथवा चिंता के परिणाम स्वरूप हमें दुख का अनुभव होता है। अब इस बात पर विचार करने पर आप देखेंगे कि यद्यपि हमें यह निश्चय रहता है कि हम मनुष्य है हम गधे नहीं है परंतु हमें उस बात में भी तो निश्चय रहना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के अपशब्दों से हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम जब सत्य पर स्थित है तो आज या कल सत्य की विजय होगी और वास्तविकता प्रत्यक्ष होकर ही रहेंगी। हमें यह भी तो निश्चय रहना चाहिए कि हम तो ज्योति बिंदु मनुष्य आत्मा है और कि हमें गधा कहने वाला स्वयं ही भूला भाई है जिसके दुर्व्यवहार को सभी उपस्थित जन देख रहे हैं। हम यह क्यों मान लेते हैं कि उपस्थित जन शायद हमें गधा ही मान लेंगे? हमारा ऐसा सोचना ही तो वास्तव में संशय करना है तथा दिव्य गुणों के सिंहासन से नीचे उतर आना है। जब कोई अपमान सूचक शब्दों का व्यवहार करता है उस समय हमें यदि यह निश्चय हो कि हम ज्योति बिंदु मनुष्य आत्मा है तो हमें उस व्यक्ति पर हंसी आएंगी जो हमें गधा कहता है और हमें ऐसा अनुभव होगा उस मनुष्य द्वारा ही बोल रही है माया। हमें ऐसा महसूस होगा कि वह मनुष्य परवश है आप इस बाहर है बेचैन है और इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। उसके मन में आग लगी हुई है इसीलिए उसके मुख से शोले माने अग्नि के कण निकल रहे हैं। परंतु मैं तो शुद्ध हूं और शांत आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान अमृत की गागर हूं, मुझ पर उसका क्या प्रभाव? वह अज्ञानी है, वह यह नहीं जानता कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इसीलिए अज्ञान निंद्रा की अवस्था में बड़बड़ाते हुए वह मुझे गधा कह रहा है। मुझे तो अपने स्वमान में स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार के स्वमान अर्थात सत्मान माने सम्मान में स्थित होने वाले मनुष्य को अपमान का दुख नहीं होगा। जब आप बाह्यमुखी होकर कर दूसरों के अपशब्दों को मानते हैं अर्थात सुनते हैं और स्वीकार करते हैं तभी अपमान का अनुभव होता है। परंतु जब आप अंतर्मुखी होकर ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाते हैं तो स्वमान अर्थात सम्मान होता है, यह निश्चित नियम है। अपनी इज्जत अपने हाथ में न कि दूसरे के हाथ में। उक्ति प्रसिद्ध है कि आदमी की अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है, क्योंकि वास्तव में दूसरे के अपशब्दों अथवा अनुचित व्यवहार से मनुष्य का अपमान नहीं होता, बल्कि जब मनुष्य स्वयं अपने मान माने अर्थात मैं ज्ञान शांति आनंद और प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूं इस स्वमान को गंवाकर अपने चेहरे पर उदासी की रेखाएं लाता है और स्वयं को भूलकर अनाप शनाप बकने लगता है और अंतर्मुखी के बजाय बाह्यमुखी हो जाता है, तब वह अपनी इज्जत अपने आप ही उतारता है। तब लोग समझते हैं कि यह भी ओछा आदमी है, इसमें भी सहनशीलता धीरज और महानता नहीं है, यह भी गंभीर चित्त तथा मधुर भाषी नहीं है, बल्कि उतना ही असभ्य असमर्थ अज्ञानी और अपकारी है। दूसरों का हमारे व्यवहार को देखकर हमारे बारे में ऐसा मानना ही वास्तव में अपमान है। अतः यह कहना गलत है कि उस मनुष्य ने सबके सामने मेरी टोपी उतार दी, क्योंकि वह व्यक्ति जब अनुचित व्यवहार करता है तब भी यदि हम अडोल रहते हैं तो दूसरों की निगाहों में उसी की टोपी उतरती है, हमारा सम्मान तो बना ही रहता है, परंतु जब हम भी दूषित होकर उस जैसा व्यवहार करने लगते हैं अर्थात जब हम अपनी पवित्रता और महानता का ताज अथवा शांति की टोपी स्वयं उतार देते हैं तभी हमारी इज्जत की टोपी उतर जाती है। सहनशीलता स्नेह मधुरता और गुण ग्राहकता की धारणा। अब हम दूसरी परिस्थिति पर विचार करके देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमारी किसी गलती से अथवा किसी अवगुण से किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य बिगड़ जाता है अथवा उसको हानि पहुंचती है और वह उसके परिणाम स्वरूप किन्हीं लोगों के सामने हमारे लिए कुछ असभ्य शब्दों अथवा व्यवहार से पेश आता है। उस परिस्थिति में भी हमें अशांत नहीं होना चाहिए, बल्कि उस विकट परिस्थिति को अपने लिए कर्म का दंड मानकर खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरा भाई ने मुझसे कहा तुम पूरे 4 बजे मेरा सामान लेकर कर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना। अब मैंने सोचा कि अभी तो काफी समय पड़ा है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेट गया, मेरी आंख लग गई थी। उठते ही पूरी कोशिश की परंतु थोड़ी देर से पहुंचा और वहां देखा कि गाड़ी चलने ही वाली थी और मेरे भाई मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप भाई साहब अन्य दोस्तों के सामने कहने लगे तुम तो बिल्कुल गंवार हो, तुम्हें समय का पता ही नहीं लगता, तुम हमेशा काम चौपट कर देते हो, तुम हमारे यहां कोई नालायक आदमी पैदा हो गए हो, जाओ दूर हो जाओ मेरी आंखों के से, तुम्हें जरा भी अकल नहीं। अब संभव है कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरे भाई ने अपने दोस्तों के आगे मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया। यह भी संभव है कि ऐसा सोचकर मैं उदास और अशांत हो जाऊं, परंतु वास्तव में मुझे उदास या अशांत नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुझे यह सोचना चाहिए कि मैंने जो अपकार अथवा भूल की है यह उसी का दंड है, अतः मुझे उसे खुशी खुशी सहन करना चाहिए, क्योंकि इससे तो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। भले ही मेरा भाई कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहा है परंतु उस गलती को देखकर मुझे अशांत या आकुल व्याकुल होने की गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे मुख से कुछ भी अनुचित नहीं बोलना चाहिए, बल्कि पहली गलती का यह दंड भोगकर उस कर्म का खाता समाप्त कर देना चाहिए, वरना अब कुछ अनुचित बोलने या सोचने से मेरा विकर्म का खाता और बढ़ जाएगा। मेरी गफलत ही इस सारी परिस्थिति का मूल कारण है, इसीलिए अब मुझे इस परिस्थिति से यह गुण ग्रहण करना चाहिए कि भविष्य में मैं अधिक जिम्मेदारी तथा स्फूर्ति से काम करूंगा और गफलत नहीं करूंगा। यहां कोई व्यक्ति कह सकता है, हमसे गलती हो जाने पर यदि कोई हमारा निरादर करता है तब हमें ये विचार तो आता ही है कि हमने गलती की है, हम भविष्य में अपने उस अवगुण को मिटाने का संकल्प भी करते हैं, परंतु हमें उस समय यह संकल्प आता है कि हमारी गलती जताने का जो तरीका वह व्यक्ति अपना रहा है वह गलत है। हमें उसके तरीके को देख कर दुख होता है और मन में यह सोचकर अशांति होती है कि सारे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाने से वह भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, अथवा वे हमारे बारे में कहेंगे कि यह तो डरपोक है, तभी तो चुप कर गया, इसे अपना सामान ही नहीं है, तभी यह अपमान सहन कर गया। अब इस बात पर ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वास्तव में ऐसा सोचना हमारी कमजोरी तथा भूल है। अनुभव ये कहता है कि यदि हम उस परिस्थिति में उद्गनित होने की बजाय मुस्कुराने लगते हैं और अपने मन में मलिनता या वेग को न आने देकर स्नेह और आदर से पेश आते हैं तो दूसरों के अपमान सूचक शब्द भी हल्के हो जाते हैं, दूसरे उपस्थित जनों की दृष्टि में भी उसका कोई महत्व ही नहीं रहता, बल्कि वह बात हंसी में टल जाती है। यदि हम उस अपमान सूचक शब्द से अधिक प्रभावित और अशांत होते हैं तब दूसरे ही उस बात पर विशेष ध्यान देते हैं, और यदि हम उसे टाल देते हैं तो दूसरे भी उस बात पर ध्यान नहीं देते। अतः युक्ति यह है कि स्नेह एवं सहनशीलता, मधुरता और दूसरों के प्रति मान का जो गुण अपनाते हुए उस परिस्थिति को पार कर जाए, वरना वह परिस्थिति ही हमारे हृदय को छेद कर पार करेंगी और हम सचमुच अपमानित तथा अशांत भी होंगे और हमें ऐसा अनुभव होगा कि किसी ने हमें गोली मार दी अथवा हमारे सीने में आग लगा दी। जब कहीं गोली चल रही होती है तो हर एक नागरिक उससे अपना बचाव सोचता है, जब कहीं आग लगी है तो हर समझदार व्यक्ति उस आग को बुझाने की या कम से कम स्वयं उससे बच निकलने की युक्ति अपनाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपमान रूपी गोलियों की बौछार कर रहा है अथवा हमारे सीने में आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम उससे अपना बचाव करें, और इसका बचाव केवल यही है कि हम स्वयं को दिव्य गुणों की ढाल द्वारा सुरक्षित करें, स्वरूप की स्मृति द्वारा शीतल रखें, स्वरूप की स्मृति द्वारा शीतलता रखें और मधुर मुस्कान से परिस्थिति को पार करें, दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का बर्ताव करके उस पर विजय प्राप्त कर लें, वरना अपमान रूपी गोली से जख्मी होना अथवा अपशब्दों की आग से जलना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। इस परिस्थिति से हताहत होकर कर कहना कि हाय मेरा मन घायल हो गया है, मेरे हृदय की गति रुक गई है, मेरा मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है, भैंस बुद्धि वालों लोगों की काम है जो कि गोली और आग को देखते हुए भी उससे हट नहीं जाते और अपनी रक्षा नहीं करते। इस सृष्टि के प्रति निरपेक्ष भाव होने से शांति। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य जिन व्यक्तियों पर कोई उपकार करता है वे उसी की बात को ही नहीं मानते अथवा अधिक मूल्य नहीं देते, और मनुष्य समझता है कि इसमें मेरा अपमान और अथवा निरादर है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक मनुष्य ने अपने बाल बच्चों को बड़े स्नेह से पाला और उनकी पढ़ाई लिखाई पर काफी धन खर्च भी किया, परंतु बच्चे बड़े होकर उसको पुराना पंथी और रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मानते हैं और स्वयं को आधुनिक विचारधारा वाला माने मॉडर्न का अनुगामी मानते हैं और इसीलिए अपने पिता की बात को टाल देते हैं, उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। अतः वह मनुष्य यह सोचकर मन में दुखी होता है कि देखिए ये कैसा जमाना आ गया है, मैंने जिन बच्चों को इतने परिश्रम से और दिन रात की कमाई से पाला आज वे भी मेरा कहना नहीं मानते और मेरा उचित सम्मान नहीं करते, दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति में वे भी मेरी बात को वजन नहीं देते और इस प्रकार मेरा अपमान होता है और लोग कहते हैं कि फला आदमी के बच्चे नालायक हैं, वे उसे दो कौड़ी का भी नहीं मानते। अब यदि इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाए तो यह भी अशांति का कोई कारण नहीं है, बल्कि यह तो मनुष्य को उपराम चित्त और संन्यास वृत्ति नाम के दिव्य गुण रूपी दो अनमोल रतन देने वाली परिस्थिति है। जब वह मनुष्य स्वयं ही कह रहा है कि देखिए अब कैसा जमाना आ गया है, तो फिर अशांत और दुखी होने का क्या कारण है? उसे मन में यह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान काल, वर्तमान समय, वर्तमान काल कल युग अर्थात अधर्म युग है। इसमें मनुष्य अधम होते हैं, वे कृतज्ञ कर्तव्य विमुख और धर्म भ्रष्ट होते हैं, अतः उनसे यह आशा हो ही सकती है कि वे अपने पिता की उचित बात को भी पुराने पंथ की बात कहकर टाल दे। कल युग नाम वाले जमाने में दिव्य मर्यादा नहीं होती और अब तो कलयुग का अंत भी आ पहुंचा है, तो आसुरी लक्षणों की पराकाष्ठा होना भी स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्यचकित या व्यथित होने की क्या बात है? अब तो सृष्टि तमो प्रधान और राक्षसी हो चुकी है, अब यहां के लोगों से सुख स्नेह की आशा करना भूल है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अब अपने मन को समझाए कि जो कुछ भी मेरे साथ पेश आ रहा है यह मेरे मन को संसार से उपराम तथा आसक्ति तोड़ने के लिए शिक्षा दे रहा है और मुझे अपना मन अपने सच्चे मीत परम पिता परमात्मा ही की ओर जोड़ लेना चाहिए। मनुष्य को सोचना चाहिए कि अब सभी आत्माएं माया ही की मत पर है और ये बच्चे आदि मेरे नहीं है, ये भी सभी माया ही के हैं। मैं भी अब प्रभु का होकर मन में प्रभु की याद बसाऊंगा। इस प्रकार उसे चाहिए कि इस संसार में कार्य व्यवहार करते हुए भी मन को इससे उपराम कर ले और इसके साथ अपना कोई मानसिक नाता न मनाते हुए निरपेक्ष भाव से जीवन व्यतीत करे। विपरीत परिस्थितियों में भी शांति, मनुष्य के मन को अशांति तभी होती है जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती अथवा कोई कठिनाई या विघ्न सामने आता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को सोचना चाहिए कि छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराश तराश कर पत्थर को भी पूजनीय मूर्ति बना दिया जाता है, अथवा जैसे सागर की मौजों से टकराते टकराते पत्थर भी शालिग्राम बन जाता है, या जैसे समुद्र के तूफान, समुद्र के सीपी, रतन, शंख आदि उछालकर किनारे पर ला देते हैं, वैसे ही मेरे सामने की यह विकट परिस्थितियां भी मुझे तराश कर जीवन को अनुभवी, उच्च और दिव्य बनाएंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि विकट परिस्थितियों को या असफलताओं को अपने ही कर्मों का परिणाम मानकर सहनशीलता को धारण करे, क्योंकि इन दिव्य गुणों की धारणा से ही वह देवता बनेगा और स्वार्गिक सुख शांति प्राप्त कर लेगा। इस संसार की हरेक घटना को एक अटल भावी जानकर वह यह याद रखे कि जो होना था सो हो गया, यह संसार परिवर्तनशील है, एक दिन यह विकट परिस्थिति भी नहीं रहेगी और फिर सुख के दिन आएंगे। अब तो यह कलयुगी दुखी संसार ही 2 दिन का है, शीघ्र ही इसका महाविनाश होकर सतयुग के सुखपूर्ण दिन आएंगे। मुझे उसके लिए सतोगुणी बनना चाहिए। व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन कैसे मिटे और शांति कैसे मिले? मनुष्य की अशांति का एक कारण यह भी है कि वह बीती हुई दुखद पूर्ण गाथाओं को बार बार याद करता रहता है। उदाहरण के तौर पर वह यह सोचता है कि अमुक मनुष्य ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, मेरे अमुक संबंधी ने समय पर मेरे लिए सहायता नहीं की थी, मेरे अमुक पुत्र ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी, अजी फला मनुष्य तो ऐसा है कि उसमें फला फला दोष है। वह जब किसी से बात करता है तब इस प्रकार की बात बीती हुई बातों को दुखित मन से उसका वर्णन करता है कि मानो वह इस कहानी को दोहरा दोहरा कर अविनाशी बना देता है, जैसे कि अविनाशी दुख पाना ही उसका लक्ष्य हो। वह अपने जीवन के इतिहास के दुख संबंधित अध्यायों को खोलकर मन में बार बार पढ़ता रहता है, जैसे कि वह कोई ईश्वरीय चरित्र हो या कोई मुक्ति जीवन मुक्ति का मंत्र हो या सत्यनारायण की सच्ची कथा हो। इस प्रकार के स्वभाव वाला मनुष्य मानो स्वयं को स्वयं ही उलझाता है अथवा उल्टा लटका देता है और फिर कहता है कि हाय मुझे कोई छुड़ाए, मुझे कोई सुलटा करे। ऐसे मनुष्य को अब शांति प्राप्ति के लिए यह सोचना चाहिए कि मेरा ये संकल्प विकल्प तो ऐसे है जैसे कि संसार रूपी वाटिका में फूल चुनने के बजाय कांटे चुन चुन कर अपने हृदय को आप ही घायल करना। अभी एक कांटे की चुभन मिटी भी नहीं होती है कि मैं दूसरा कोई कांटेदार बात याद करके मन के दूसरा घाव तैयार कर देता हूं अथवा दूसरे घाव को ताजा कर देता हूं। यदि इस प्रकार मैं बार बार अपने हृदय में बीती हुई बातें रूपी कांटों को लगाता रहूंगा तो मेरे मन के घाव भरेंगे ही नहीं और आखिरी वे नासूर बनकर मुझे ही दुखी करेंगे। थोड़े थोड़े दिनों के बाद फिर इन बातों की याद हो आना और मेरे मन में उनके कारण दुख होना अथवा उनकी ओर मेरा ध्यान जाना तो इस बात का सूचक है कि अभी ये कांटे मेरे हृदय से निकले ही नहीं है। अतः अब जबकि शांति ही मेरा लक्ष्य है और सुख ही मेरे लिए साध्य है तो मैं कांटों को निकाल ही दूंगा अथवा योगा अग्नि से इन्हें भस्मीभूत कर दूंगा, क्योंकि हर एक समझदार व्यक्ति बगीचे में फूल चुनने के लिए जाता है और कांटे छोड़ देता है। बीते हुए को भूत कहते हैं, इसीलिए बीती को भूत मानो। हिंदी भाषा में बीते हुए अथवा हो चुकी घटना को भूत माने पास्ट भी कहते हैं। भूत का दूसरा अर्थ प्रेत आत्मा भी है। भूत माने इविल स्पिरिट को याद करने वाले तो जैसी मति वैसी गति के नियम के अनुसार स्वयं भी भूति बनेगा। अतः जिस मनुष्य का स्वभाव खराब बीती बातों माने भूत को याद करने का है, उसे सोचना चाहिए कि यदि खराब बीती बातें भी भूत माने प्रेत इविल स्पिरिट के समान है, अतः इन्हें याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्मृति से तो मैं भी, मेरी स्थिति भी और गति भी भूतों जैसी ही हो जाएंगी। इस प्रकार भूत अर्थात बीते हुए वृत्तांतों को भूत अर्थात प्रेत मानकर उनसे छुटकारा पाना चाहिए और भविष्य को याद करना चाहिए, भविष्य को, क्योंकि जैसा हम जैसा अच्छा बनना चाहते हैं वैसे अच्छे संकल्प और कर्म भी हमें करने चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा भविष्य अथवा भविष्य फल होगा। बीती को बीती जानो, दुनिया न जीती मानो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा याद रखे यह संसार तो एक ड्रामा की न्याई है, अथवा जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखी जाती है वैसे ही सब कुछ मैं देख रहा हूं। इस ड्रामा अथवा फिल्म की रील तो आगे आगे खुलती जाती है। अतः बीती बातों को याद करना तो गोया पीछे की रील खोलने की कोशिश करना है जो कि रील लिपट चुकी है। यह तो फिल्म को देखने की रीति नहीं है। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि इस विराट ड्रामा में जो जो दृश्य आगे आता जाता है मुझे तो उसे देख देखकर हर्षित होना चाहिए। जो ड्रामा की रील लिपट चुकी है अब उसको यदि मैं फिर याद करने की कोशिश करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा और आगे के दृश्यों से वंचित हो जाऊंगा और पिछड़ जाऊंगा। इस प्रकार मनुष्य को साक्षी तथा दृष्टा होकर कर इस संसार के आगामी वृत्तांतों को देखना चाहिए और जो ड्रामा में नूंद गया है अर्थात जो रील में लिपट चुका है उससे नहीं चिपटे रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य के मन में बीते हुए समय के बारे में ऐसे विचार आते हैं कि उस मनुष्य ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था, फला मुकदमे में हार गया था, उस व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं की थी आदि आदि, तो उसे यह सोचना चाहिए कि जिस समय की बात मैं कर रहा हूं अब तो वह समय भी नहीं रहा है, अब तो वह व्यक्ति भी कालांतर में बदल गए हैं, वह परिस्थिति भी बदल गई है, वह कर्म फल भी मैंने भोग कर पूरा किया, अतः अब तो मुझे भी बदलना चाहिए। मेरे किसी कर्म का वह फल था वह तो मैं भोग चुका, अतः अब उसका चिंतन करना गोया उस दुख के काल को माने टाइम को समय को स्वयं ही बढ़ाना है। यह तो दुख के धागे को खींचकर लंबा करना है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मुझे दुख और अशांति ही सदा प्रिय है, वरना दुख के ताने बाने बुनते जाने का और क्या अर्थ हो सकता है। परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य तो वास्तव में सुख और शांति ही चाहता है। अतः मेरा लक्ष्य तो सुख और शांति की ही प्राप्ति है, परंतु कर्म अथवा पुरुषार्थ गलत है। इस प्रकार अपने मन को समझाकर मनुष्य को चाहिए कि बीती को बीती जाने और बीते हुए समय की दुनिया न जीती जाने और आगे के लिए उत्तम पुरुषार्थ करे। वह पुरानी और गंदी बातों की याद करके वायुमंडल को पुराना तथा दूषित न करे, उसमें दुख के प्रकंपन माने वाइब्रेशंस न फैलाए, बल्कि सुख का साधन सोचे। गंध को चुगना कौवे का काम है, मोती चुगना हंस का धंधा है। संसार में हम देखते हैं कि कौवा गंदगी के ढेर पर बैठकर उसको खोलता खोलता रहता है और उसमें से गंदगी को ही चुनता रहता है, परंतु हंस के बारे में प्रसिद्ध है कि वह मोती चुगता है अथवा वह खीर ले जाता है, नीर छोड़ देता है। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि मुझे ज्ञान रतन चुगने वाला अथवा दिव्य गुण रूपी मोती चुगने वाला हंस बनना अच्छा लगता है या गंदगी चुगने वाला कौवा। मुझे कोई हंस शब्द से संबोधित करे तो मुझे अच्छा लगेगा या कौवा शब्द से संबोधित करे तो भाएगा। स्पष्ट है कि हंस का ही स्वभाव सबको प्रिय है। अतः बीती हुई गंदी अथवा दुखदायक बातों को खोलने तथा कांव कांव करने, दूसरों को इकट्ठा करने तथा उनका ध्यान भी उस गंध की ओर खिंचवाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। बीते हुए इतिहास से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य के साथ जो कुछ बीती है अर्थात उसका जो इतिहास है उससे उसे सबक माने शिक्षा ले लेनी चाहिए, परंतु सबक माने अध्याय अथवा वृत्तांत को बार बार रटते अथवा पढ़ते नहीं रहना चाहिए। बार बार पीछे की बात दोहराना कमजोर व्यक्तियों का काम है और गोया पुरुषार्थ की गाड़ी के पहिए को पीछे धकेलने के समान है। अतः उन्नति के आकांक्षियों को चाहिए कि आप बीती बातों से अथवा जीवन वृत्तांतों से गुण ग्रहण करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। समय का मीटर चल रहा है, संकल्पों का भाड़ा बढ़ रहा है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि समय का मीटर तो चलता जा रहा है और जीवन की घड़ियां बीतती जा रही है। अतः यदि मैं वर्तमान समय को भी बीती हुई बातों की याद में बिता दूंगा तो मुझे पश्चाताप होगा कि यह भी समय हाथ से निकल गया। हाय, मैंने पर चिंतन में सारा समय गंवा दिया, मैंने प्रभु चिंतन नहीं किया। पहला समय दुख में गया था और अब दुख की याद में चला गया। अतः अब मुझे बीते हुए काल की बातों को याद कर करके काल को गंवाने की बजाय अकाल पुरुष परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि केवल उस ही की स्मृति सुखदायक है और समय को अनमोल बनाने वाली है। इस मनुष्य ने भलाई नहीं की यह सोचने की बजाय अब मुझे यह सोचना चाहिए कि जो हुआ वह सब मेरे ही कर्मों का फल था। अतः अब उन मनुष्यों और उनके किए पर ध्यान नहीं देकर कर मुझे ध्यान अपना जो ध्यान है अटेंशन है परम पिता परमात्मा की ओर तथा भलाई या अच्छे कर्मों की ओर लगाना चाहिए, वरना मेरे अशुद्ध एवं व्यर्थ संकल्पों तथा विकर्मों का खाता और बढ़ता जाएगा और मुझ पर अधिकाधिक भाड़ा बढ़ता जाएगा। अतः समय रूपी मीटर को चलता हुआ मानकर, बीती को अपने ही कर्मों का फल जानकर मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के कर्म खाता अथवा भाड़ा न बढ़ाए, वरना उसे स्वयं ही वह चुकता करना होगा। यह जानना चाहिए कि मनुष्यों की माला फेरने से मेरी खुशी में घाटा पड़ेगा और कि अवगुणों तथा दुखों का चिंतन करने की बजाय अब मुझे प्रभु का चिंतन करना चाहिए, वरना उमरिया धोखे में ही खो जाएंगी। बीती हुई कौन सी बातें याद करनी चाहिए। बीती हुई बातें याद करने का जो मनुष्य का स्वभाव है या टेर है, अब उसे अन्य प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। उस द्वारा मनुष्य को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के वास्तविक इतिहास को दोहराना चाहिए, अर्थात उसे यह विचारना चाहिए कि मैं पहले मुक्तिधाम में था, वहां से आकर मैं सतयुगी दैवी सृष्टि में जन्म लिया और सतयुग तथा त्रेता में कुल 21 जन्म संपूर्ण पवित्रता एवं सुख शांति संपन्न राज्य भाग्य भोगा। फिर द्वापर युग के शुरू में देह अभिमानी तथा विकारी हो जाने के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में दुख और अशांति ने प्रवेश किया और जैसे जैसे मुझमें काम, क्रोध, विकारों का वेग बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मेरे जीवन में दुख और अशांति की वृद्धि होती गई और मैं उनके निवारण अर्थ यज्ञ, तप, पूजा, पाठ, भक्ति आदि करता रहा, परंतु इसके बावजूद भी दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। वर्तमान समय संसार में अत्यंत पतन, दुख और अशांति है और मैं भी इसी कलयुगी संसार का ही जीव हूं। सतयुग और त्रेता में 21 जन्म पूर्ण सुखी, द्वापर और कलयुग में थोड़ा बहुत दुख वाले 63 जन्म ले चुकने के बाद अब मेरी 84वां जन्म व्यतीत हो रहा है। वर्तमान जन्म मेरा अंतिम जन्म है क्योंकि अब इसके बाद कलयुग का अंत होना है और एटॉमिक विश्व युद्ध तथा ग्रह युद्धों द्वारा महाविनाश होना है। अब सभी आत्माओं को वापस मुक्ति धाम को लौटना है और ज्ञान, योग तथा दिव्य गुणों को धारण करके पवित्र बनना है, वरना धर्मराजपुरी में अपने किए विकर्मों के लिए दंड भोगना पड़ेगा। अब तो ज्ञान, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा के अभ्यास द्वारा सत्व प्रधान और पावन बनूंगा और मुक्ति तथा सतयुगी देवी पद की प्राप्ति के योग्य बनूंगा। इस प्रकार की बीती तथा भविष्य की याद से मनुष्य का कल्याण होता है। रोग की अवस्था में भी मन में शांति कैसे रहे? इस कलयुगी दुखमय सृष्टि में हरेक मनुष्य को कभी न कभी तो रोग होता ही है। रोग की अवस्था में हरेक सामान्य मनुष्य थोड़ा बहुत दुखी होता है और उस समय उसे देह ही का भान रहता है। वह उस समय परमपिता परमात्मा की स्मृति का भी आनंद नहीं लेता। अतः प्रश्न उठता है कि रोग की परिस्थिति में भी मनुष्य योग युक्त कैसे रहे और आत्मिक शांति और ईश्वरीय आनंद में कैसे तल्लीन रहे। इस प्रश्न को लेकर यहां कुछ एक लाभकारी युक्तियों का उल्लेख किया गया है। रोग में भी योग युक्त और शांत रहने के लिए युक्तियां अनेक सत्संगियों के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर मनुष्य ज्ञान का आधार ले तो वह रोग को योग में बदल सकता है। वह ज्ञान की सहायता से स्वस्थ माने आत्मनिष्ठ अर्थात आत्मनिष्ठ भी हो सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकता है। अतः ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि वह रोग की बजाय योग पर ध्यान दे। उदाहरण के तौर पर यदि दर्द के कारण उसके मुख से शब्द निकलता हो उसकी बजाय वह आत्मा हूं ऐसे बोले और यदि आई शब्द निकलता हो तो आई प्रभु, हां आई प्रभु कहे, अथवा आई एम सोल आई एम सोल, यानी मैं आत्मा हूं, यह वाक्य बोले। यदि पीड़ा के कारण उसके मुख से ओ अथवा ओ इस प्रकार की ध्वनि निकलती हो तो ध्वनि निकलती हो तो ज्ञान के आधार पर ओम या ओम शांति का उच्चारण करें और हाय न कहकर बल्कि हे शिव बाबा, हे प्रभु ऐसे कहे। इस प्रकार थोड़े से पुरुषार्थ से फलस्वरूप उसका मन दुख को याद करने की बजाय दुख हर्ता की ओर चला जाएगा और प्रकृति कृत तन से हटकर परमेश्वर की ओर जाने का अभ्यासी हो जाएगा और सुख अनुभव करेगा। अतः रोगी का पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि उसका मन तन में न होकर तन्मय माने ईश्वर में एकाग्र हो जाए। वह रोग के समय फरियाद माने याचना न करे बल्कि याद माने प्रभु को याद करे, हाहाकार न करे बल्कि शिव की स्मृति का संकल्प करे, क्योंकि इस संकल्प से उसका कायाकल्प हो जाएगा और सूली के समान कष्टदायक रोग भी कांटे से भी कम दुख देने वाला अनुभव होगा। राम के भी जो राम माने शिव है, इनकी याद से मनुष्य को निश्चित ही आराम मिलता है। अतः मनुष्य को यदि नींद न आए और आराम अनुभव न हो तो वह बार बार लोगों को यह शिकायत न करे कि आज आराम नहीं मिला, बल्कि उसे चाहिए कि वह मन में आराम आ राम अर्थात हे राम आइए की भावना रखे। इस प्रकार आराम की चिंता करने के बजाय राम का चिंतन करने से उसे अवश्य ही आराम मिलेगा। तो युक्ति यह है कि मनुष्य अपने शरीर की देखभाल और रोग का इलाज उपचार तो करे, परंतु साथ साथ अपनी विचारधारा को ज्ञान युक्त और ईश्वरोन्मुक्त बना ले। उदाहरण के तौर पर यदि उसके टांगों में दर्द हो तो वह उसका इलाज करने के साथ साथ यह सोचकर खुशी में रहे कि अब तो मुझे परम पिता परमात्मा ने ज्ञान और योग रूपी दो दिव्य टांगे दिए, जिनके आधार पर मैं खड़ा होकर मैं सदा के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकता हूं। दिल का रोग हो तो वह यह सोचे कि अब तो दिलवर परमात्मा मिले हैं, अर्थात उनसे ही मेरी हृदय की और सच्ची प्रीति है। नेत्रों में कष्ट हो तो सोचे कि अब तो कल्याणकारी प्रभु ने मुझे ज्ञान चक्षु अथवा दिव्य नेत्र प्रदान किया है। भुजा को कुछ हो जाए तो सोचे कि अब तो मैं चतुर्भुज अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी बन रहा हूं। मस्तक में कुछ हो तो सोचे कि अब तो परम पिता परमात्मा ने दिव्य बुद्धि रूपी अनमोल वरदान मुझे दिया है। प्राणों का कोई रोग हो तो विचार करे अब तो प्राणनाथ परमात्मा ही का हो गया हूं और वे निश्चय ही मेरा कल्याण करेंगे। इस प्रकार की विचारधाराओं मनुष्य को शांति के सागर परमात्मा से शांति अवश्य मिलेंगी। उसकी शारीरिक संबंधी चिंता ईश्वरीय चिंतन में बदलकर सुखदायक हो जाएंगी। वह रोग को भी योग के लिए फुर्सत का एक साधन मानकर योग का आनंद लेगा। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि रोग तो मेरे तन को है, मेरा मन उधर क्यों जाता है? मन को तो अपने मनन का अथवा ज्ञान मंथन का कार्य चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को तन से अलग करके और शरीर को एक कुटिया मानकर योग रूपी तपस्या में लग जाए। अगर उसे नेत्रों का कष्ट हो तो वह त्रिनेत्री भगवान शिव की और अपना ध्यान ले जाए, अगर उसके सिर में दर्द हो तो वह अपने मन को डबल सिरताज देवी देवताओं माने श्री लक्ष्मी श्री नारायण आदि की ओर ले जाए। अगर उसके गले में कोई खराबी महसूस हो रही हो तो वह मन को गले में ना अटकाकर सरस्वती अम्बा की ओर ले जाए। अगर उसकी भुजाओं में कुछ पीड़ा हो रही हो वह अपनी उन स्थूल भुजाओं को भूलकर अपने पुरुषार्थ अथवा पराक्रम का विचार करे, क्योंकि भुजाएं पुरुषार्थ की निशानी है। यदि टांगों में कोई तकलीफ हो तो अपनी परम धाम की यात्रा का विचार करे, जो कि इन स्थूल टांगों के बिना ही होती है। यदि उसका सारा शरीर कष्ट में हो तो वह विराट पुरुष ही का विचार करके मन को ज्ञान की गवेषण में लगा दे। इस प्रकार के पुरुषार्थ से उसे बीमारी भूल जाएंगी और उसकी मानसिक स्थिति अव्यक्त और हर्षयुक्त रहेंगी। यदि उसे औषधि उपचार के बावजूद भी स्वस्थ लाभ न हुआ तो भी वह स्वस्थ अर्थात आत्मनिष्ठ तो हो ही जाएगा। राग से रोग और द्वेष से दोष मानो और रोग द्वारा हिसाब किताब चुकता जानो। अगर गहराई से देखा जाए तो राग से ही रोग उत्पन्न होता है। आज किसी मनुष्य को खाने के किन्हीं पदार्थों में राग है तो अन्य किसी को रात को जाग जाग कर भी खेल तमाशे देखने का राग माने चस्का है, या अन्य किसी को किसी की देह में अनुराग अर्थात इश्क या आसक्ति है। किसी को देखो तो दिन में 10 बार चाय पान, सिगरेट, बीड़ी, भल्ले, पकौड़ी, कोका कोला या मिठाई पकवान खाने का राग है, तो अन्य किसी को विशेष सब्जी भाजी मेवे मावे में राग है। किसी को किसी स्त्री या पुरुष के नाम रूप में अनुराग है और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने तेज को नष्ट कर रहा है। यह विभिन्न प्रकार का राग ही मनुष्य को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से दुर्बल बनाकर विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला है। इसी प्रकार द्वेष से ही दोष होता है, यानी रक्त का दोष माने खून में खराबी, वायु का दोष आदि होता है। द्वेष से मनुष्य में कई बीमारियां होती है, इसीलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं किस किस प्रकार के राग और द्वेष में फंसा रहा कि आज मुझे ये रोग तथा दोष हुए हैं। उन उन प्रकार के राग तथा द्वेष को बीमारी का मूल कारण मानकर उन्हें अपने मन से निकाल देना चाहिए। इस पुरुषार्थ से उसका रोग भी थोड़ा बहुत शांत होगा और मन में शांति तो अवश्य मिलेगी ही। इस प्रकार रोग भी उसका आध्यात्मिक आरोग्य का अथवा आत्मिक उन्नति का साधन बन जाएगा और उसका ध्यान तन के बजाय अपने मन अथवा स्वभाव पर चला जाएगा और उसे बदलने के लिए अब वह परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति में लग जाएगा और शांति का अनुभव करेगा। पुनश्च उसे सोचना चाहिए कि राग या अनुराग के वशीभूत होकर मेरे जो कर्म बंधन अनेक मनुष्य से जुटे हैं अथवा मेरी जो अनेक जन्मों का कर्म खाता बना है, यह रोग भी उसके चुकता होने का एक साधन है। अतः उसे ऐसा मानना चाहिए कि यह तो एक खुशी की बात है कि मित्र संबंधियों के साथ, डॉक्टर के साथ तथा अन्य आत्माओं के साथ मेरा जो कर्म बंधन जुटा हुआ था अथवा जो मेरे अपने ही कर्मों का रहा हुआ लेखा जोखा है, वह शरीर द्वारा भोग कर भावी के अनुसार मैं चुकता कर रहा हूं। अपने ऋण को चुकाने से तो हर एक मनुष्य को खुशी ही होती है, अतः मैं भी दुखी क्यों हूं। अपने रोग को इस दृष्टिकोण से देखने से मनुष्य में भी मन में ढाढ़स मिलता है। रोग में मृत्यु से भयभीत न होकर मृत्युंजय को याद करना चाहिए। रोग के समय मनुष्य को मृत्यु के भय से भी अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा पहले भी तो अशरीरी ही थी, शरीर तो उसने बाद में लिया और वह तो एक दिन छूटना ही है। फिर बात यह है कि अगर यह तन छूट भी गया तब भी तो खुशी की ही बात है, क्योंकि रोगी तन छूटकर अब निरोगी और नया तन मिलेगा, अतः उसे अब और कुछ भी चिंता न करके स्वयं को प्रभु अर्पण मानना चाहिए। मृत्यु के बाद मृत्यु को याद न करके मृत्युंजय को अर्थात परमात्मा शिव को याद करना चाहिए। उनकी स्मृति में तन छूटने से भी मनुष्य को बहुत उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होंगी और आगे के लिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति का सुअवसर उसे परमपिता परमात्मा स्वयं अवश्य ही देंगे। मृत्यु शैया पर रोगी अवस्था में पड़े हुए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह घड़ी मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी अपने मित्र संबंधियों से और अपनी देह से भी मुझे मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि अब मेरे मन का संबंध अनन्य भाव से सद्गति दाता परमात्मा ही से होना चाहिए। अर्थात अब मुझे नष्ट मोह स्मृति लब्ध होना चाहिए। जब मेरे तन से प्राण निकले तो ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते और स्वयं को ईश्वर की गोद में अनुभव करते हुए निकले। आहा, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि इस तन को छोड़ते समय मुझे आनंद दाता परम पिता परमात्मा की एक तान और स्पष्ट स्मृति है। इस प्रकार सहनशीलता का गुण धारण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि मरने से पहले ही मर जीवा बन जाए, अर्थात अपनी सभी कर्मेंद्रियों से और देह से अपने मन को न्यारा माने डिटैच करके ईश्वरीय स्मृति रूपी गोद का न्यारा सुख ले लेवे। यह ईश्वरीय स्मृति ही देवताओं का विमान है जो कि मनुष्य को अंत में स्वर्ग में ले जाता है। अंग्रेजी भाषा में रोगी को पेशेंट कहते हैं। पेशेंट का दूसरा अर्थ सहनशीलता और धैर्यवान भी है। अतः रोगी का पहला धर्म सहनशीलता होना है और उसके लिए तो उसे शांति दाता परमात्मा की स्मृति में स्थित होना चाहिए। इन युक्तियों से मनुष्य को निश्चय ही शांति मिलेगी। निर्धनता की अवस्था में भी मन में शांति कैसे रहे? निर्धनता भी जीवन में दुख और अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बन जाया करती है। निर्धन मनुष्य सोचता है कि मैं बड़ा भाग्यहीन और दीन हूं, धन न होने के कारण न कोई मेरा मान है और न ही कोई मेरी शान। मेरी कितनी ही इच्छाएं और आवश्यकताएं धन की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाती। हाय, निर्धनता का जीवन भी भला कोई जीवन है? इस प्रकार के सोच विचार से वह मनुष्य आहें भरता हुआ जीवन गुजारता है और परमात्मा के साथ अपने उच्च संबंध को न जानने के कारण स्वयं को दीनहीन मानते हुए मन ही मन में अशांत रहता है। माना कि रुपए पैसे वाला धन नहीं है, परंतु अन्य प्रकार का धन तो है। वास्तव में धन की कमी के कारण मनुष्य को अशांत नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्मयुक्त रीति से धन कमाने का पुरुषार्थ करने के साथ साथ उसे यह सोचना चाहिए कि धन तो कई प्रकार का होता है। उदाहरण के तौर पर समय भी एक बहुत बड़ा धन है। चरित्र, पवित्रता, अथवा शील तो एक बहुत बड़ा धन है जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली मनुष्य के पास होता है। ज्ञान रूपी धन तो अविनाशी और सब प्रकार के धन से श्रेष्ठ माना गया है। अतः मेरे पास रुपए पैसे वाला धन कम सही, परंतु यह सब प्रकार के सर्वोत्तम धन तो है। इसीलिए मेरा यह कहना गलत है कि मैं भाग्यहीन हूं, निर्धन हूं या दीन हूं। अच्छा, मेरे पास कोई भी धन न सही, प्रभु के प्रति धन्यवाद तो है। अतः मैं तो सौभाग्यशाली हूं, मैं उस दाता अथवा त्रिलोकी नाथ सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे उस पिता के पास तो कुछ भी कमी नहीं है। हाँ, उससे संबंध तोड़ देने के कारण तथा विकारों के वशीभूत होकर कर्म भ्रष्ट होने के कारण ही मेरी यह हालत हुई है, परंतु ये दिन तो बीत जाएंगे। अब मैं तो पुनः उस प्रभु की सच्ची प्रीति जोड़कर और पुरुषार्थ करके सब प्रकार का धन प्राप्त कर ही लूंगा। इस प्रकार धन न होने पर भी मनुष्य को ज्ञान धन तथा उस द्वारा पवित्रता रूपी धन प्राप्त करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और लौकिक तथा परमार्थिक पुरुषार्थ द्वारा भविष्य के लिए धन का साधन जुटाना चाहिए। आत्मग्लानी न करके ज्ञान धन प्राप्त करो और प्रभु का धन्यवाद करो। मनुष्य को आत्मग्लानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि आज श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं है। उनकी तुलना में तो आज वास्तव में सभी लोग भिखारी और कंगाल है। जो भारत कभी सारे विश्व का मुकुटमणि था, आज उसकी सरकार भी निर्धन है। तभी तो सरकार दूसरे देशों से सहायता एड मांगती है। आज अमेरिका अति उन्नत राष्ट्र है, जिसके पास बहुत धन है, उसके पास भी मानसिक सुख रूपी धन नहीं है। अतः वे भी शांति के भिखारी है। अन्य भी जो धनवान नर नारी है, उनमें से भी किसी के पास समय रूपी धन नहीं है और किसी के पास चरित्र रूपी धन नहीं है। और आहार व्यवहार विचार की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है, वह तो शायद ही किसी के पास है। अतः मुझ में जो हीनता और दीनता का भाव है, मुझे उसको निकाल देना चाहिए और समय रूपी धन से ईश्वरीय ज्ञान पवित्रता तथा शांति रूपी धन खूब कमाना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान तो धन भी है और जन्म जन्मांतर के लिए धन का साधन भी है। इसी धन के बारे में ही तो किसी ने गाया है कि मैंने राम नाम धन पायो सखीरे, मैंने राम नाम धन पायो। दीन हो तो सवायो सखीरे, मैंने राम धन पायो। अतः स्थूल धन नहीं है तो मुझे बारंबार हृदय से उस परम पिता का धन्यवाद तो करना ही चाहिए कि जो मुझे ज्ञान धन, चरित्र धन आदि सर्वोत्तम धन देकर तथा योग रूपी साधन देकर स्वर्ग के राज्य के योग्य बना रहा है। धन वालों का धन से योग, आप ज्ञानवान बनकर धनदाता से योग लगाइए। जिस मनुष्य के पास बहुत धन है, उसका ध्यान तो सारा दिन धन, ब्याज, बैंक बैलेंस, उधार, लेन देन आदि पर ही लगा रहता है। अतः उसका योग धन में ही लगा रहता है। प्रभु को तो याद करने की उन्हें फुर्सत ही नहीं। परंतु जिसके पास कम है वह अपना बुद्धि योग धन दाता परम पिता से जुटा सकता है और अतुल सुख संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः उसका योग उच्च और कमाई अतुल होने के कारण वह अधिक सौभाग्यशाली है। फिर जिसके पास धन बहुत है, किंचित देखिए तो उनका धन किस तरफ खर्च होता है। वे धन को एक तो शादियों पर, हनीमून, सिनेमा या अन्य शौक पर, घर में काम वासना के भोगों के सुंदर सुकोमल सामग्री जुटाने पर ही अधिकतर खर्च करते हैं। काम विकार पर खर्च करने के अतिरिक्त वे अधिक और अनुचित लाभ रूपी लोभ के वशीभूत होकर चीजों में मिलावट, ब्लैक इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी, अफसरों को रिश्वत देकर परमिट और लाइसेंस लेने का अर्थात लोभ और प्रलोभन पर खर्च करते हैं। अधिक धन होने पर उन्हें अहंकार तो प्रायः हो ही जाता है और अहंकार अथवा शान को बनाए रखने के लिए वे व्यर्थ रसम रिवाज दिखाने, दिखावटें और बनावट श्रृंगार पर भी खर्च करते हैं। फिर जो धन वे कमाते हैं उनमें उनकी मोह ममता तो हो ही जाती है और घर बार आदि जिन जिन वस्तुओं पर वे खर्च करते हैं उनकी बुद्धि उन्हीं की ओर लगी रहती है, मन उन्हीं में जुटा रहता है। इस प्रकार जब उन्हें धन का नशा चढ़ जाता है, लोभ की चाशनी भी वे चख लेते हैं, मोह ममता में भी वे फंस जाते हैं, तब उनकी कोई इच्छा पूरी न होने पर अथवा किसी द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन होने पर क्रोध भी उन्हें आता है और उस क्रोध में वे किसी पर मुकदमा करने, किसी को मजा चखाने, किसी को पुलिस अथवा गुंडों द्वारा सीधा करने की सोचकर उस पर भी खर्च कर डालते हैं और कुछ न सही तो पान सिगरेट के व्यसनों पर, शराब कबाब की आदत या जीप के किसी चटकीले रसीले लगने वाले अन्य पदार्थों को खाने खिलाने में ही उनका धन जाता है। इस प्रकार उनका धन प्रायः काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति आदि पर ही लगता है, जिससे कि वे पाप के भागी बनते हैं। वे कर्मों की दृष्टि से कंगाल हो जाते हैं और विकारों द्वारा अशांति का आवाहन करते हैं। मनुष्य को बुराई के लिए तन, मन या धन, तीनों में से कोई साधन तो चाहिए ही। अतः जिसके पास धन अधिक है, यदि उसके पास ईश्वरीय ज्ञान पर ज्ञान का अंकुश नहीं है तो वे धन द्वारा विकारों और विकर्मों को खरीदते हैं। निर्विकार धनी तो इस जगत में कोई भी नहीं है, इसीलिए सभी अशांत है। अतः जिस मनुष्य के पास बहुत अधिक धन नहीं है उसे यह सोचना चाहिए कि आज के जमाने में अधिक धन नहीं है तो अच्छा ही है, मैं अधिक बुराइयों से भी तो बच गया हूं। मेरा बुद्धि योग अब घर बार में या महल माड़ियों में भटकेगा भी तो नहीं, अतः मेरे लिए तो अब धन दाता माने परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाना सहज है, क्योंकि मेरी बुद्धि अधिक झंझटों में उलझी हुई नहीं है। अर्थ नहीं है, अनर्थ भी तो नहीं है, कोष नहीं है, परंतु संतोष तो है। इस प्रकार ज्ञान धारण करते हुए मनुष्य को देखना चाहिए कि आज जो बहुत धनवान लोग हैं उनके पास भले ही अर्थ माना धन तो है, परंतु वे अनर्थ माने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि भी तो बहुत करते हैं। मैं तो अनर्थ करने से बचा हुआ हूं, मुझे तो परमात्मा ने अर्थ बोध करा दिया है, अर्थात आत्मा, ब्रह्म, परलोक, देवता, मन, कर्म, संन्यास, योग, मुक्ति आदि आदि के वास्तविक अर्थ का साक्षात्कार करा दिया है। अतः यदि लोगों के पास अर्थ माने स्थूल धन है तो मेरे पास ये सही अर्थ माना ज्ञान है, जिससे कि अनर्थ अर्थार्थ दुख का नाश होता है। उनके पास भले ही वित्त माने धन है, परंतु उनका चित्त तो उनके पास नहीं है। उनका चित्त तो धन ने, अशांति ने अथवा झंझटों ने ले लिया है। मेरा चित्त तो हर्षयुक्त है, शांत है, एकाग्र है और परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थिर होकर आनंद विभोर है। पुनश्च धन वालों के पास भले ही कोष है, उनको संतोष तो नहीं है, उन्हें तो अधिक और अधिक का ही लोभ है। अतः यदि उनके पास रुपए पैसे के अर्थ में धन है तो मेरे पास संतोष रूपी धन है। मैं तो थोड़े से धन में भी सुख शांति का अनुभव करता हूं। उनके पास अधिक धन होने पर भी उनका पेट नहीं भरता, अर्थात उन्हें धन का चस्का लगा ही रहता है। उनका पेट भरता भी हो तो भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, उनकी तृष्णा नहीं मिटती। ऐसा नहीं है तो प्रभु को प्राप्त कर लो। अब ज्ञान धन प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाओ। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि आज तो धन की कमी भी मेरे लिए गुप्त वरदान बन गई है, क्योंकि एक तो बहुत धनवान होने के कारण मैं संसार के झंझटों में अधिक उलझा हुआ नहीं हूं और मेरे पास समय भी है कि मैं पैसा 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 जपने के लिए या जपने में लगे रहने की बजाय प्रभु 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 की स्मृति में रह पा रहा हूं। यदि मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता तो शायद मैं संसार के स्थूल पदार्थों में इतना मस्त रहता कि योग की सर्वोत्तम मस्ती लेने की सोचता ही नहीं। आज की निर्धनता की बलिहारी है कि मैं ईश्वर की ओर मन किया है। अतः मैं दीन दुखी या दुर्भाग्यशाली नहीं हूं, बल्कि जैसे कि उक्ति भी है, मेरे जैसा धनी न जग में, मैंने लाख करोड़ कमायो, सखीरी मैंने राम धन पायो। मैं वैसा ही धनी हूं। आज धन वालों के लिए तो यह दुनिया है, परंतु मुझ निर्धन के लिए तो त्रिलोकी पति भगवान स्वयं है। यह मेरे लिए हर्ष की बात है, यह अशांति का विषय नहीं है। आज भले ही मेरा कोई मान नहीं है, परंतु मेरे पास ईमान तो है। पवित्रता रूपी सच्ची कमाई के कारण ईश्वर के दरबार में तो मेरा नाम होगा ही। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को दीन माने हीन न मानकर दीनहार माने ईमानदार धर्मयुक्त माने और ज्ञान पवित्रता तथा शांति रूपी धन प्राप्त करता हुआ स्थूल धन कमाते कम होने पर भी स्वयं को धन धान्य माने, क्योंकि ये ज्ञान और पवित्रता आदि धन ईश्वर के सर्वोत्तम वरदान है, जो कि अत्यंत सौभाग्यशाली ही को प्राप्त होते हैं। आय कम है परंतु उपाय तो बड़ा है। उपयुक्त रीति से विचार करते हुए मनुष्य को संतोष करना चाहिए और स्वयं को दिन दुखी मानने के बजाय हर्षित होना चाहिए। ज्ञान के आधार पर निर्धन मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि भले ही मेरी आय कम है, परंतु मेरे पास उपाय माने ज्ञान पुरुषार्थ तो बड़ा है। इस ईश्वरीय ज्ञान रूपी उपाय से तो मैं 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाऊंगा, संपूर्ण सुखी हो जाऊंगा, मुझे कभी भी दुखी और अशांत नहीं होंगी। इस प्रकार चिंतन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि परमपिता परमात्मा की जो आज्ञा है कि पवित्र बनो और योगी बनो, उसको पूर्ण रीति से पालन करे। पवित्रता का व्रत लेने से उसे आज नहीं तो कल अवश्य ही प्राप्ति होगी। अतः यदि मनुष्य के पास धन नहीं है तो वह पहले जबान का धनी बने अर्थात परमात्मा से पवित्रता का वचन करके उसे पूरा निभाए तो समयांतर में सब संकट दूर हो जाएंगे। जो मनुष्य जबान का जितना बड़ा धनी बनेगा वह भविष्य में उतना ही बड़ा धनवान होगा। परंतु आज हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास काला धन कम है वे भूखे भजन न होए गोपाला, इस प्रकार के वाक्यों के रूप में बहाना बनाते हैं। वे सारा दिन धन कमाने खाने और फिर कमाने के लिए तैयार होने में लगा देते हैं और परमपिता परमात्मा के ज्ञान तथा सहज स्मृति के लिए दो घड़ी भी नहीं निकालते। वे कहते हैं इस योग वोग ने ही हमें निर्धन बनाया है, वरना जिन देशों का ध्यान योग आदि की ओर नहीं होकर कर व्यापार कारखाने और धन कमाने के साधनों पर है वे आज बहुत ही धनवान है, वे बहुत ही आगे निकल गए हैं। परंतु ऐसा कहने वाले लोग यह नहीं समझते कि केवल धन ही वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कोई सिद्धि नहीं बल्कि साधन है। जीवन का लक्ष्य अथवा सिद्धि दो संपूर्ण सुख शांति ही है। आज जिन देशों में धन है वे भी संपूर्ण सुख शांति से युक्त नहीं है, क्योंकि उनके मन में बमों का भय और विकारों तथा विलासिता की अग्नि धधक रही है। और आज अशांति दुख निर्धनता आदि का मुख्य और मौलिक कारण ही यह है कि मनुष्य स्वयं को तथा परमपिता परमात्मा को भूल चुका है। आज जो लोग परमात्मा को याद करते हैं वे भी परमात्मा को प्रायः जानते नहीं है और उनके कर्म भी श्रेष्ठ नहीं है। अतः आज आवश्यकता इस बात की ही है कि मनुष्य परम पिता परमात्मा का तथा कर्मों की गहन गति का ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान युक्त रीति से परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर पवित्र कर्म करे और फिर धन कमाने का पुरुषार्थ करे। तभी इस दुनिया में लूट खसोट लोभ लालच विकार और भ्रष्टाचार कर पीड़न एवं परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि सर्वत्र देखने में आएंगी। तभी विश्व में शांति होगी और कोई भी निर्धन नहीं रहेगा, न ही धनवान लोग दूसरों की कमाई को ऐठेंगे। ज्ञान दान करोगे तो धनी बनोगे, कर्म नहीं कर सकते तो धर्म ही करो। हर एक व्यक्ति को यह रहस्य भली भांति समझ लेना चाहिए। या तो मनुष्य इस जन्म में कर्मों से धन प्राप्त कर सकता है या पूर्व जन्मों में धन दान करने के फलस्वरूप उसका जन्म धनवान घराने में होता है। अतः पूर्व जन्म में यदि मनुष्य ने धन दान नहीं किया था तो अब उसे धन के लिए कर्म अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य कर्म नहीं कर सकता अर्थात यदि वह वृद्ध है रोगी है निर्बल है या अन्य किसी कारण से असमर्थ अथवा लाचार है तो धर्म करे अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करे तथा दूसरों को भी ज्ञान ध्यान की श्रेष्ठ बातें सुनाए। इस प्रकार ज्ञान रूपी सर्वोत्तम धन दान करने से भविष्य में उसे स्वार्गिक सुख मिलेगा ही, परंतु अब भी धर्म करने वाले अर्थात वास्तविक एवं विवेक युक्त ज्ञान देने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा किसी न किसी के द्वारा जुटाएंगे ही, क्योंकि ऐसे सर्वोत्तम समाज सेवा करने वाले की सेवा करना समाज का कर्तव्य है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पूजन करके लोग उनसे धन मांगते हैं, वे भला किस साधन से इतने धनवान बने। जिन राजाओं आदि के नाम से सिक्का चलता रहा, उन्होंने भला राजघराने में किस कर्म सिद्धांत के अनुसार जन्म लिया। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि पूज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ने पूर्व जन्मों में जगदम्बा सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में ज्ञान धन तथा संतोष रूपी धन भी कमाया और दान भी किया। दूसरा, राज्य घराने के संबंध में जो ऊपर प्रश्न किया गया था उसके विषय में भगवान शिव ने स्पष्ट किया है कि राज घराने में जन्म लेने वालों ने भी पूर्व जन्मों में निर्धनों आदि को धन दान दिया था। अतः अब जो व्यक्ति शांति तथा पवित्रता रूपी धन से वंचित मनुष्यों को ज्ञान धन देकर पवित्रता एवं शांति से युक्त करेगा, उससे भी निश्चय ही भविष्य में स्वर्गिक राज्य भाग्य तथा सुख सुविधा आदि प्राप्त होंगी ही। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान को ही रंक से राव बनाने वाला साधन मानकर अब मनुष्य को इस कमाई में लग जाना चाहिए और अशांत तथा दुखी नहीं होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि अब तो निकट भविष्य में इस कलयुगी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट योग भ्रष्ट और मिथ्या ज्ञान अभिमानी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों तथा ग्रह युद्धों आदि के द्वारा होने ही वाला है। अतः जिसके पास बहुत धन है उन पर भी यही उक्ति चरितार्थ होंगी, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए। सफली होंगी उसकी जो ईश्वरीय अर्थ लगाए। अतः ये स्थूल धन तो अब थोड़े ही वर्षों के बाद काम आना ही नहीं है। जिन्होंने यह ज्ञान धन पाया और कमाया होगा, आने वाले आपदकाल में वही संतुष्ट होंगे, उन्हीं का भविष्य उज्जवल होगा। इन सभी अनमोल रहस्यों को जानकर अब मनुष्य को चाहिए कि अब समय रूपी धन न गवाए, बल्कि ये आने वाले कुछ वर्ष संतोष से और पुरुषार्थ से गुजारते हुए उसे ज्ञान धन, योग धन, पवित्रता धन और चरित्र धर्म कमाने में ही लगाकर सफल कर ले। ओम शांति।